ओम शांति। हम सभी बाबा की वाणी में कई बार सुनते हैं कि जो जाट को बलि चढ़ते हैं तो उसको देवी स्वीकार करती हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो एक धक से बाप के ऊपर बलि चढ़ जाते, बाबा उस बलि को स्वीकार करते हैं। ऐसी ही बाबा के ऊपर एक धक से बलि चढ़ने वाले, बलिहार जाने वाले विरल रत्न आदरणीय राजयोगी रामलोचन भाई हम सभी के बीच में हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। 72 में आपको बाबा मिले, जिस वर्ष बाबा का परिचय मिला उसी वर्ष बाबा के यज्ञ के अंदर स्वाहा, इसलिए मैं जाट को बलि कहती हूँ। आप मधुबन पांडव भवन में भी अपनी काफी सालों तक सेवाएं देते रहे और उसके बाद आप नीचे अभी शांतिवन के अंदर जो वीआईपी किचन है, बाबा का भंडारा है, वो सारा ही संभालते हैं। सारा वर्ष अनेक वीवीआईपी भाई बहने आपके पास आते हैं और बहुत ही तन और मन का सुख लेकर के जाते हैं। आदरणीय भ्राता जी अनेक शिविरों में, कॉन्फ्रेंस में, बीके भाई बहनों के प्रोग्राम के अंदर अपना लाभ देते रहते हैं। आपके द्वारा बाबा ने देश विदेश में अनेक स्थानों पर सेवा कराई है। आज हम सभी सुनेंगे, विषय है योग की स्टेजेस एवं प्राप्तियां। आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। भगवान के घर में भाग्यवान आत्माएं भट्टी करने आए हैं, ऐसे तो भाग्यवान सभी हैं जिन आत्माओं ने भगवान को पहचाना है, लेकिन आप विशेष भाग्यशाली हैं क्योंकि मधुबन भगवान का घर है, कर्म भूमि चरित्र भूमि है, उस स्थान पर भट्टी करना ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। आप लोगों में से हो सकता है कि कई आने वाले थे नहीं आए, और कई नहीं आने वाले थे आ गए, इससे उनके भाग्य का पता पड़ जाता है कि इस आत्मा का भाग्य क्या है। तो आप सब भट्टी करने पहुंचे हैं। भट्टी से मुख्य पांच प्राप्ति होती है। आप देखना, ये पांचों प्रकार में कोई न कोई प्राप्ति हर समय होती रहनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आपकी भट्टी यथार्थ नहीं चल रही है। कर रहे हैं लेकिन यथार्थ नहीं है। वो पांचों प्रकार की प्राप्ति में पहली प्राप्ति है भट्टी अर्थात भगवान को राजी करना। भगवान मुझ आत्मा पर राजी है, इसका प्रूफ है कि भगवान के द्वारा आपको वरदान प्राप्त होगा। वरदान मिला है, इसका प्रूफ है कि आप जिस बात को मुश्किल समझते थे वो ऐसे होगा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, ऑटोमेटिक है। भगवान का वरदान लेने में मेहनत है, अर्थात भगवान को राजी करने में मेहनत है, लेकिन राजी हो गया तो वरदान मिला, फिर वरदान अपना काम स्वयं करता है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे अपनी गुलजार दादी है, जिस तन में बाप दादा दोनों आते हैं, जब गुलजार दादी शुरू शुरू में आई हैदराबाद सिंध कराची में, तो पुरुषार्थ तो सब करते थे, लेकिन दादी का पुरुषार्थ बहुत विशेष था। क्या विशेष था? उसके पुरुषार्थ को देखकर साकार बाबा ने गुलजार दादी को वरदान दिया था, जब छोटी थी तब का वरदान दिया हुआ है। क्या वरदान था? कि इस बच्ची के नयन बड़े रूहानी हैं, ये आगे चलकर नयन बड़ी सेवा करेंगे। इस बच्ची के बोल बड़े मीठे हैं, आगे चलकर इस बच्ची के बोल बड़ी सेवा करेंगे। तो वरदान तब मिला, लेकिन भगवान का वरदान स्वयं भगवान पूरा कर रहा है। बाप दादा बैठकर स्वयं नैनों से दृष्टि दे रहा है, मुख से बोल रहा है। तो पहली बात है भगवान को राजी करना। दूसरी बात है कि भट्टी अर्थात भरपूरता का अनुभव होना। आत्मा भरपूर होती जा रही है। तीसरी बात, भट्टी अर्थात संपूर्ण परिवर्तन। जैसे भट्टी में कोई चीज पड़ता है तो रूप रंग सब बदल जाता है, संपूर्ण परिवर्तन अर्थात जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, सफलता मिलती जा रही है, परिवर्तन होता जा रहा है। चौथा, भट्टी अर्थात परिपक्वता। और पांचवा, भट्टी अर्थात सब खजाने से संपन्न। ये पांचों प्रकार की प्राप्तियां आप भट्टी के द्वारा देखते रहना कि कोई न कोई प्राप्ति मुझ आत्मा को हो रही है, नहीं तो अटेंशन दो। अगर हम योग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, चेक करो क्या मेरी इस स्थिति से भगवान राजी है। जिस विधि से क्लास सुनना चाहिए सुनता हूँ, सुनती हूँ, जिस विधि से योग करना चाहिए वैसा करता हूँ या करती हूँ, या अलबेलापन है। हम भगवान को राजी कर रहे हैं, अगर नहीं है तो परिवर्तन करो। जैसा बाबा चाहता है वैसे करो, राजी करो। ये लक्ष्य ले लो कि मुझ आत्मा को भगवान को राजी करके भगवान से वरदान लेना ही है। वरदान भूमि पर आए हो, वरदान लेना। जो चीज आपको बहुत मुश्किल लग रही हो वो सहज छूट जाए। जो चीज नहीं हो पा रहा वो सहज हो जाए, कहते वरदान की प्राप्ति। तो आप भट्टी करो, लेकिन भट्टी में 5 प्राप्तियां सामने रख करके करना। भट्टी भी 5 प्रकार की भट्टी है, 5ों में कोई न कोई भट्टी करते रहे, निरंतर की भट्टी। सिर्फ क्लास की भट्टी नहीं, निरंतर की भट्टी। 5ों प्रकार की भट्टी में पहली है लोहार की भट्टी, लोहार लोहा। दूसरा है ईंटों की भट्टी, तीसरा है सोनार की भट्टी, चौथा है धोबी की भट्टी, और 5वां है ज्ञान योग की भट्टी। ज्ञान योग की भट्टी। अब ये 5ों प्रकार की भट्टी आपको करना है, क्योंकि 5ों प्रकार की भट्टी से प्राप्तियां अलग अलग हैं। पहला है लोहार की भट्टी। लोहा तो सबने देखा है, 2 गुण कहो या अवगुण कहो, विशेष 2 हैं। 1 लोहा काला होता है, दूसरा लोहा हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। तो आत्मा भी द्वापर युग से विकारों के बस संकल्प बोल कर्म करते करते एकदम काली हो गई, पतित हो गई, और शरीर धारण करते करते 5 विकारों के बस संस्कार पक्के हो गए, हार्ड हो गए। तो जो लोहे जैसे संस्कार हार्ड हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, लोहे जैसी काली आत्मा हो गई है, उस काली आत्मा को बाप के समान प्योर बनाना, संस्कार ब्रह्मा बाप के समान बनाना, उसके लिए पावरफुल योग की आवश्यकता है। पावरफुल योग अर्थात शक्तिशाली याद। शक्तिशाली किसे कहते हैं? जैसे देखो आग है, छोटा रूप है तो उसे चिंगारी कहते, छोटा रूप। थोड़ा ज्यादा जगह जल रही तो कहते आग जल रही है, और भयानक रूप ले ले तो कहेंगे आग की ज्वाला निकल रही है। अर्थात जो पावरफुल हो उसको ज्वाला रूप कहते हैं। तो आपको आत्मा को प्योर बनाने के लिए ज्वाला रूप की तपस्या करनी पड़ेगी, ज्वाला रूप की भट्टी। ज्वाला रूप की भट्टी किसे कहते हैं? ज्वाला रूप की भट्टी की तीन स्टेजेस है। किसी न किसी स्टेज में स्वयं को रखना। पहली है चंद्रमुखी योग, दूसरा है सूरजमुखी योग, तीसरा है ज्वालामुखी योग। चंद्रमुखी, सूरजमुखी और ज्वालामुखी। चंद्रमुखी योग अर्थात स्वयं को फरिश्ते रूप में स्थित करके ब्रह्मा बाप से वतन में मिलन मनाना। ब्रह्मा बाप समान अपनी स्थिति बनाना, जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता स्थिति में स्थित है, ऐसे स्वयं को फरिश्ता स्थिति में स्थित रखना। फरिश्ता की स्थिति क्या है? फरिश्ता अर्थात शब्द आप सुनते हैं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट किसे कहते हैं? जैसे सूर्य है, स्वयं प्रकाश का गोला है, और उस प्रकाश के गोले के चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही है जो पूरे संसार में जा रही है। तो प्रकाश के गोले के बीच में प्रकाश स्वरूप है, ऐसे मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं और ये शरीर लाइट का कार्ब है। हड्डी मांस का नहीं, लाइट का कार्ब है। लाइट के कार्ब के बीच में मैं आत्मा लाइट स्वरूप विराजमान हूं। ये स्थिति अभी बनाकर देखो, तुरंत बाबा सामने आ जाएगा। संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, बाबा का सामने आ जाएगा। जैसे हम आप साकार में मिलते हैं, ऐसे बाबा सन्मुख दिखाई देगा। फरिश्ता स्थिति में रहो, चाहे बैठे हो तो ये मन की स्थिति बना के रखो कि लाइट का शरीर है, इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा ज्योति स्थिर बिंदु स्वरूप लाइट स्वरूप आत्मा चमक रही। ऐसे लगेगा बाबा सन्मुख है, फिर बाबा से बातें करो, ब्रह्मा बाबा से। अगर ब्रह्मा बाप की स्मृति ले आए अव्यक्त रूप की, तीन फायदा होगा, अभी करके देख लो। एक फायदा कि ब्रह्मा बाप की स्मृति से, ब्रह्मा बाप से मिलन होने के कारण ब्रह्मा बाप की शक्तियां आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। शिव बाप है, ब्रह्मा मां है। इस समय ब्रह्मा मां और शिव बाप इक्वल हैं, समान हैं। तो पहली शक्ति मिलेगी, महसूस होगा। दूसरी बात, ब्रह्मा मां का प्यार मिलेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कभी मां बच्चे को गोद में बिठा लेती है, सिर पे हाथ फेरती है, पुचकार देती है। इसी को कहा जाता है अति इंद्रिय सुख, अलौकिक सुख, परम आनंद का सुख, जो इंद्रियों से परे आत्मक रूप में स्थित होकर ले रहे। तीसरी बात, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का दिल से पूर्ण रूप से संकल्प आएगा कि मैं फॉलो करूं। जो बाबा फॉलो फादर कहता है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि जब तक ब्रह्मा से प्राप्ति की अनुभूति नहीं है तब तक ब्रह्मा को आप फॉलो कर नहीं सकते। बिना प्राप्ति के ब्रह्मा से प्यार जुटेगा ही नहीं, वो जबरदस्ती भले को मेरा बाबा है, बाकी प्यार जुटेगा नहीं। मेरा है जो मेरे शब्द से दिल भर जाए, आंख में आंसू आ जाए, जिसको बाबा कहता रोम रोम सिहर उठे, वो मेरा बाबा तब लगेगा जब इस अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। प्रैक्टिकल प्राप्ति, इसको कहा जाता है चंद्रमुखी योग। दूसरा है सूरजमुखी योग। सूरजमुखी योग अर्थात आत्मक स्वरूप में टिककर परमात्मा शिव बाबा को याद करना, इसमें ब्रह्मा बाबा नहीं है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, उस रूप में स्थित होकर याद करो। परम धाम में बैठो। अगर परम धाम नहीं जा सकते हो तो शिव बाबा को नीचे ले आओ, यहां बिठा लो। मैं बाबा के बाजू में बैठी हूं। केंद्रित करो, लेकिन शिव बाबा से कनेक्शन आपका तब जुटेगा जब आत्मक स्वरूप में स्थित होंगे। तब सिर्फ संकल्प करने से नहीं होगा कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, मेरा बाप है, शिक्षक है। सिर्फ ऐसे संकल्प करने से कनेक्शन नहीं जुटेगा। अगर कनेक्शन नहीं जुटा तो करंट नहीं है। तो मुख्य बात है पहले अपने को इस शरीर से अलग ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, जो कल आप मुरली में सुना होगा, बीज रूप की स्थिति, उसकी अलौकिक अनुभूतियां, सुना है ना। ऐसे आत्मक स्वरूप में अपने को अनुभव कर पाओगे। उसके लिए मैं आत्मा हूं, इसके लिए आत्मा की जो चार स्टेजेस है, उन चारों स्टेजेस का अभ्यास करते रहोगे तब स्वयं को आत्मक स्वरूप में टिका पाओगे। मैं आत्मा हूं, सिर्फ ये संकल्प कितना भी करो, हर एक अपने अनुभव से जानता होगा कि कितना हम आत्मक स्वरूप में रहते। तो उसके लिए आत्मा की चारों स्टेजेस, चार स्टेज है। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, चारों एक ही है या अलग है? शब्द तो चारों सुनते हो मुरली में, एक ही है या अलग है? देही अभिमानी अर्थात जब आप आत्मा कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म कर रहे हैं, आत्मा देह का आधार लेकर कर्म कर रही है, क्योंकि कर्म बिना देह के हो नहीं सकता है। तो कर्म करते समय देह का आधार लेते हुए, लेकिन देह के भान से अपने को परे की स्मृति रखना, मैं देही अर्थात आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं। इंद्रियों का आधार है लेकिन हूं इंद्री से अलग। जिसको बाबा कहता है कमल पुष्प के समान स्थिति, आत्मा की गृहस्थी ये इंद्रियां हैं, आंख मुख नाक कान हाथ पैर, इसकी गृहस्थी है आत्मा की। इस गृहस्थी से न्यारी, लेकिन इस अभ्यास को जितना बढ़ाओगे, पढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो आप बिल्कुल बाप समान बन जाओगे, जिसको कहा जाता है उपराम स्थिति। उपराम स्थिति ये है न्यारी स्थिति, वो है उपराम स्थिति। उपराम स्थिति अर्थात आत्मा कर्म इंद्रियों को आर्डर दे करके कर्म कराए, मैं आत्मा इन इंद्रियों से शरीर से टोटल अलग हूं, अलग हो करके इन इंद्रियों को आर्डर दे, आर्डर प्रमाण कर्म कराए। मैं अलग हूं नहीं, हूं ही अलग, अलगपन की अनुभूति हो, इसको कहते हैं उपराम अवस्था। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है, आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो जब शुरू होता तो चिपकता है, छुड़ाते हो, जिसको कहते न्यारी स्थिति, चिपकता है छुड़ाते हो, इसको कहा जाता है कमल पुष्प। और जो उपराम स्थिति है उसको कहा जाता है गुलाब का पुष्प, गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की विशेषता तीन है जो और किसी फूल में नहीं, क्या है? किसी भी फूल में नहीं है जो गुलाब के फूल की विशेषता है। जी खाने के, अच्छा फल के, कई फूल के खाने के काम आते हैं, अच्छा ठीक। और विशेष वो विशेषता बताओ जो और फूल में ना हो। अच्छा ठीक, तीन विशेषता है बता देते हैं। पहले बता रहे थे उपराम स्थिति का बताते हैं। तो जैसे हलवा या सब्जी तैयार हो जाती है, पहले चिपकती है छुड़ाते हैं, चिपकती है छुड़ाते हैं, जब तैयार हो जाती है तो है बर्तन में लेकिन बर्तन को छोड़ देती है, बर्तन में लेकिन एकदम छूटी हुई, पलटो ऐसे गिर जाएगी। बर्तन में होते हुए बर्तन से अलग है। तो कई ने एक बार ऐसे क्लास करा रहे थे तो एक ने प्रश्न किया कि आजकल तो वो बर्तन आ गया जिसमें चिपकता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं वो जी। तो हमने कहा बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया था तब वो बर्तन नहीं था, लेकिन तब इतना ज्ञान योग स्पष्ट नहीं था। अब तो ज्ञान योग इतना स्पष्ट हो गया है कि अब तो चिपकना ही नहीं चाहिए। अगर अब भी चिपकते हो तो माना अभी फायदा नहीं ले रहे हो। जैसे बर्तन बना है, कई नहीं यूज करते हैं, नहीं लाभ ले पा रहे। तो गुलाब के फूल की तीन विशेषता, पहली बात आप देखा होगा या देखेंगे कि जब गुलाब का फूल कंप्लीट खिल जाता है तो ऐसे जरा सा करो सारी पत्ती झड़ जाती, और किसी फूल की झड़ती नहीं है, सूख जाएगी लेकिन झड़ेगी नहीं। और फिर क्या बचता है, बीच में वो बूर बचता है। अर्थात देह में रहते हुए कर्म इंद्रियों का आधार लेते हुए संकल्प किया और एक सेकंड में ऊपर चले गए, जैसे कुछ है नहीं, सब झड़ गई, बस मैं आत्मक रूप में टिक गई। दूसरी विशेषता कि गुलाब के फूल पे कोई कीड़ा नहीं बैठता है, भंवरा नहीं बैठता है, सब फूल पे बैठेंगे, उस पे नहीं बैठता है। यहां तक कि शहद की मक्खी भी नहीं बैठती। सुना है क्या कभी गुलाब का शहद है? होता ही नहीं, मक्खी नहीं बैठती। अर्थात सेवा करते, सबके साथ रहते, जैसे उसके लिए कोई है ही नहीं। एक मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाबा के साथ चल रहे हैं, खेल रहे हैं, हर कर्म कर रहे हैं। और तीसरी विशेषता है गुलाब के फूल की कि वो हमेशा जो पूर बसता है, आप देखो गुलाब के फूल का सदा सदा खुशबू देता है। फूल सब खुशबू देते हैं लेकिन रूहानी खुशबू देता है, अर्थात रूह स्वरूप में स्थित रूह को देखना, रूहानी बाप को याद करना, रूहानी बाप की तरफ ध्यान खींचवाना। तो पहली बात बताया आपको, देही अभिमानी इतनी ऊंची स्टेज ले आओ कि उपराम स्थिति आ जाए। दूसरी है आत्म अभिमानी, जब आप योग में बैठ ते हो तब इस इंद्रियों की जरूरत नहीं है। सांस चलना ऑटोमेटिक है, क्रिया चलती रहेगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। उस समय आप टोटल शरीर से अलग होकर मैं आत्मा हूं, टोटल आत्मक भान में, आत्मक स्मृति में, आत्मक स्थिति में स्थित होकर बाप को याद करो। देह है ही नहीं, मैं हूं आत्मा। ये बीच बीच में अभ्यास करते रहो। इसे शरीर है ही नहीं। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात आप चलते फिरते उठते बैठते आपस में मिलते जुलते किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो, किसी न किसी सोमान में। सोमान देह अभिमान को खत्म कर देगा, सोमान आपके संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति कृति सब को चेंज कर देगा। क्योंकि मनुष्य जैसा स्वयं को समझता है वैसे उसकी दृष्टि वृत्ति कृति स्वतः होती है। उदाहरण के रूप से अज्ञान काल में जो आपकी पत्नी है या पति है जो भी अगर शादी से पहले मिलते तो उसको बहन जी कहते और शादी हो गई शरीर वही है सब कुछ वही सिर्फ स्मृति बदली ये बहन नहीं मेरी पत्नी है। सब कर्म धर्म दृष्टि वृत्ति सब बदल गई सिर्फ एक संकल्प ने बदला कि बहन नहीं पत्नी। ऐसे आप अपने को सोमान में रखो जो बाबा की महिमा वो आपका सोमान है। अगर सोमान में रहोगे स्वतः ही आपके श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति स्वतः होगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी संस्कार परिवर्तन करने में। वो हम जब सोमान में स्वयं को नहीं रखते हैं काफी समय हल्का छोड़ देते हैं फिर हमें मेहनत करनी पड़ती। पुराना वाला पक्का हो जाता है। अगर सोमान में रहो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा को सोमान था कि मैं प्रजा पिता ब्रह्मा हूं। पिता का सोमान प्रजा पिता हूं। अपनी पत्नी जो यशोदा जिसके साथ पत्नी का संबंध निभाया सिर्फ इस सोमान ने सब कुछ बदल दिया। जब भी यशोदा बहन मिलती थी तो बाबा कहता था यशोदा बेटी बेटी कहकर बुलाता था और यशोदा मैया भी पति को बाबा कहके बुलाती थी। सोमान ने बदल दी। शुरू शुरू में यज्ञ में जब बहनें आई तो देह भान को मिटाने के लिए जो भी दादियां हैं इन सबको बाबा ने सोमान दिया। तुम नारी नहीं हो चतुर्भुज हो चतुर्भुज हो चतुर्भुज हो चतुर्भुज हो। वो चतुर्भुज का भान नारीपन की कमजोरी से हटा दिया। मैं शक्ति स्वरूप हूं मैं शक्ति स्वरूप मैं शक्ति स्वरूप चतुर्भुज हूं सब कुछ कर सकती हूं सब कुछ कर सकती हूं। नहीं तो वो कन्याएं थी दादियां शुरू की जो बड़े बड़े घरों में थी कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी और इतनी शक्तिशाली बनी। और चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो आत्मा बिना शरीर के है। इसके लिए आप डेड साइलेंस का अभ्यास करो, इसके लिए स्पेशल टाइम निकालो। ये विशेष अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग परम धाम में बैठी हूं। परम धाम में बैठकर नीचे इस शरीर को देखो, ये शरीर बैठा है या मरा पड़ा है जैसा भी जाओ, लेकिन वहां से देखो इस शरीर को। मैं परम धाम निवासी हूं, यही मुझ आत्मा का असली घर है। यहां दे नहीं दे के संबंध नहीं, बस मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और मेरा बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। देखो बाबा को, जिसके दर्शन के लिए द्वापर युग से आत्माएं तड़पती रही, जी भर के देख लो, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा। फिर देखो ये देह अभिमान कहां गायब हो जाता है। ये जो हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका कारण इन चारों का अलग अलग जो है वो हम अभ्यास नहीं करते। तो सूरजमुखी योग के लिए आत्म स्वरूप की स्थिति बनाना आवश्यक है। आत्मक स्वरूप में टिको तो सूरजमुखी जैसे फूल है, जिधर सूरज जाता है अपने आप फूल घूमता जाता है, देखा है ना? ऐसे बाबा के बिना आत्मा रह नहीं पाएगी। ये जो है तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बात करूं, ये प्रैक्टिकल हो जाए। लेकिन जितना अपने को आत्मक स्वरूप में टिका पाएंगे उतना। और तीसरा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अर्थात अभी तक जो आप सूरजमुखी योग किया, चंद्रमुखी योग किया, बाबा से शक्ति लेते थे देते थे, ये था ज्वालामुखी योग अर्थात स्वयं को बाप समान की स्थिति में स्थित करके समान स्वरूप में स्थित होकर बाबा से मिलन मनाना, समान स्वरूप में स्थित होकर विश्व की सेवा करना, समान स्वरूप में स्थित होकर विश्व का चक्कर लगाना। बाबा आप सर्व शक्तिवान हो तो मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। इस स्थिति में स्थित हो करके मिलो, समानता की स्थिति, परम धाम में बैठो, बैठ करके बाबा के साथ साथ सकाश दो। प्रकृति को पावन बनाओ, भक्तों को साक्षात्कार कराओ, दुखियों का दुख दूर करो, ये वतन में बैठ कर करो, समान की स्थिति। लेकिन उसके लिए पहले जब ये दोनों योग ठीक होगा, चंद्रमुखी सूरजमुखी, तब आपका ज्वालामुखी योग चलेगा। और उस ज्वालामुखी योग में आत्मा प्योर बन जाएगी, संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, टाइम का प्रतिबंध है, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट हम सब ज्वालामुखी योग का अभ्यास करते। अगर नहीं टिक पाओ तो सूरजमुखी तक रहना, अगर वहां भी नहीं टिक पाओ तो चंद्रमुखी में आ जाए, इससे नीचे नहीं। इन तीनों में कोशिश करना सूरजमुखी योग पर।
प्यारे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
ओम शांति। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर रूहानियत से याद की यात्रा की अलग अलग स्टेजेस और उनकी प्राप्तियां आदरणीय भाई जी ने हम सभी के सामने रखी। बहुत ही अच्छा सुख पास रहा था, आप लोगों को लगा? हाँ? चेहरे से न सिर्फ शब्द मुख से निकल रहे थे, लेकिन जैसे महसूस हो रहा था कि शब्दों के साथ साथ शक्ति भी प्रवाहित हो रही है। भाई जी का हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं।